हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कबीर और माधुरी कहाँ हैं भाई? अर्णव, तुमने उन्हें हमारे आने की खबर नहीं दी? इस वक्त सब फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, जब दादी जी ने कबीर और माधुरी का जिक्र छेड़ दिया था। पर अर्णव उनके इस सवाल का जवाब देता उससे पहले ही पीछे से कबीर और माधुरी की चहकती हुई आवाज़ आई। हमारी दादी हमें याद करें और हम ना आएं, ऐसा आज तक कभी हुआ है दादी? आवाज़ सुनकर सबने पलट कर देखा। पीछे से कबीर और माधुरी एक दूसरे की हथेली थामे मुस्कुराते हुए उनकी ओर चला रहे थे। लीजिए दादी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अर्णव ने तिरछी नज़रों से दोनों को घूरते हुए मजाकिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर धृति, जिसकी नज़रें कबीर और माधुरी पर टिकी थीं, अब चौंकते हुए अर्णव को देखने लगी थी, क्योंकि हंसी मजाक और अर्णव, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और उसका ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया और अनजान था। अर्णव की बात सुनकर जहां माधुरी नाराज़गी से उसे घूरने लगी थी, वहीं कबीर ने भी उसे घूरते हुए बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि शालिनी जी ने तुरंत ही नाराज़गी से अर्णव को टोका। अर्णव, पिटाई खाओगे तुम? ऐसे बोलते हैं? तुमसे तो अच्छे हैं दोनों, कम से कम हमें धोखे में तो नहीं रखते, हमसे झूठ तो नहीं बोलते। शादी छुपाने का ताना उड़ते उड़ते सीधे अर्णव के गाल पर तमाचा सा पड़ा था, और वो बेबसी लाचारगी से उन्हें देखने लगा था, जबकि शालिनी जी पर इसका रत्ती भर असर न हुआ। पर अर्णव को डांट पड़ते देखकर कबीर और माधुरी दोनों खुशी से चहक उठे थे, जिससे अर्णव और ज्यादा खींच उठा था। आओ बेटा, आकर साथ नाश्ता करो, कितने महीनों बाद मिले हो। भावेश जी ने खुशदिली से दोनों को नाश्ते के लिए इनवाइट किया था, जिस पर माधुरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल अंकल, नाश्ता भी करेंगे और आज ढेर सारी बातें भी करेंगे, पर पहले जरा आप सबका आशीर्वाद तो ले लें। इतना कहते हुए कबीर के साथ उसने बारी बारी सब बड़ों के पैर छुए और सबने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अंजलि जी ने दोनों को गले से लगाकर लाड़ किया और धृति एक तरफ खड़ी ब्लैंक सी सब देख रही थी। कबीर और माधुरी को ऐसे साथ देखकर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, और उसकी छठी इंद्री उसे किसी और इशारा कर रही थी, पर दिमाग था कि उस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। सबके बाद माधुरी धृति से भी मिली तो धृति भी उसके गले से लग गई। कहना बहुत कुछ चाहती थी, मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर सबकी मौजूदगी के कारण वो खामोश रह गई। पर अगले ही पल उसे जोर का झटका जोरों से लगा था, जब कबीर के शब्द उसके कानों से टकराए थे। भाभी, कंग्रेचुलेशंस, कल मौका नहीं मिला, बहुत अच्छा काम किया था आपने, आपके बनाए डिज़ाइंस हर तरफ छाए हुए हैं। ध्रुति अपनी तारीफ से नहीं चौंकी थी, क्योंकि उसे तो भाभी शब्द के आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। वो फटी आंखों से हैरान परेशान सी उसे देखने लगी थी, और हैरान हो भी क्यों ना। इतने वक्त में जब भी उसका कबीर से आमना सामना हुआ, उसने कबीर की नज़रों में ज्यादातर अपने लिए घृणा और नफरत के भाव ही देखे थे। वो हमेशा उसे नज़रअंदाज करके निकल जाता था, कभी ऐसे आमने सामने से उनकी बात हुई ही नहीं। भाभी देवर का रिश्ता बनना तो दूर की बात थी, आज कबीर की आंखों में सम्मान था और लबों पर मुस्कान सजाए वो उससे मुखातिब हुआ था, जो यकीनन धृति के लिए हैरानी का सबब था। पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ये भी एक नाटक है, जो अर्णव की फैमिली को अर्णव की सुनाई झूठी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था, पर जल्दी ही धृति संभलते हुए खुद भी इस रोल में ढल गई और सौम्य सी मुस्कान अपने लबों पर सजाते हुए बस सर हिला दिया। सब नाश्ते के लिए बैठे तो धृति शीला के साथ मिलकर सबको खाना सर्व करने लगी। धृति, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आओ बैठो और सबके साथ नाश्ता करो, अर्णव ने उसे रोकते हुए अपनी बगल वाली चेयर पर बैठने को कहा। और ये देखकर धृति के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। हमेशा तो उससे खाना सर्व करवाता था, पर आज उसे करने से मना कर रहा है, मतलब इतना दिखावा। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर पल भर को कड़वाहट के भाव उभर आए, पर जल्दी ही उसने खुद को सामान्य करते हुए जवाब दिया, बस खाना सर्व करके बैठी रही हूँ। इतना कहकर वो वापस काम में लग गई, और उसका काम खत्म होते ही माधुरी ने उसे पकड़कर अपने पास ही बिठा दिया। शीला, नाश्ता तुमने बनाया है, स्वाद तो अलग लग रहा है। अंजलि जी ने पहला निवाला मुंह में डालते ही शीला से मुखातिब होते हुए ये सवाल किया था, जिस पर उसने सहजता से इनकार में सर हिला दिया। नहीं, नाश्ता मैंने नहीं, मैडम ने बनाया है, वही नाश्ता और डिनर बनाती हैं, मैं बस उनकी मदद करती हूँ। सबके झूठ और दिखावे के बीच शीला ने सच बयां किया था, और सबकी नजरें अब धृति की तरफ घूम गईं, जिससे धृति नर्वस हो गई और घबराकर चेयर से उठ खड़ी हुई। मुझे पता नहीं था आप सबकी पसंद नापसंद, इसलिए उनकी पसंद के हिसाब से ही नाश्ता तैयार किया है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि खाना आप सबके हिसाब से ही बने, और अगर आपको मेरा बनाना पसंद नहीं तो नहीं बनाऊंगी। अपनी हाथ की उंगलियों को तोड़ते मड़ोड़ते हुए उसने सर झुकाए पूरी बात कही थी, और चेहरे पर घबराहट व नर्वसनेस साफ साहिर थी। उसे यूं शर्मिंदा होते और घबराते देखकर अंजलि जी ने बड़ी ही मोहब्बत से कहा, हमारा ये मतलब नहीं था धृति, खाना बहुत अच्छा बना है, बस स्वाद अलग था इसलिए पूछ लिया, पर नाश्ता आपने बनाया ये जानकर हमें खुशी हुई। इतने कम वक्त में आपने इतना कुछ तैयार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि आप अर्णव की पसंद नापसंद के बारे में इतना कुछ जानती हैं। हाँ बहू, हमें तो ये देखकर खुशी हुई कि आप अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभालती हैं, अर्णव की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। हम तो खुद एक दो दिन में आपसे आपकी पहली रसोई की रस्म करवाने वाले थे, पर आपने तो बिना हमारे कुछ कहे ही हमारी इच्छा पूरी कर दी। दादी ने भी अंजलि जी की बात का समर्थन किया। तब कहीं जाकर धृति कुछ सहज हुई। ये आपका घर है बेटा, और आपका अपनो परिवार है। अगर आपको कोई काम करना है तो बेशक कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। वैसे भी हमारा मानना है कि घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, पर घर की रसोई अगर घर की बेटी बहुएं संभाले तभी ठीक है। हर चीज और काम के लिए नौकरों पर निर्भर होना ठीक नहीं, गृहस्थी के कुछ काम खुद से ही करने चाहिए। और आपके इस गुण से हम प्रभावित हुए। बिन माँ बाप की बच्ची है, पर आपके संस्कार उत्तम है। हमारे अर्णव ने भले हमसे छुपाकर शादी की, पर अपने लिए पत्नी और हमारे लिए बहू लाखों नहीं करोड़ों में एक चुनी है। शालिनी जी ने बड़ी ही ममता और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। सबका अपनापन देखकर धृति के घायल मन पर जैसे मरहम लग गया था। अर्णव की पसंद के बारे में सुनकर उसे वो सब याद आ गया था जो उसने सहा था। उसकी गलती ना होते हुए जिस तरह अर्णव उसे टॉर्चर करता, सबके सामने बेइज्जत करता, उसे तो अर्णव की पसंद नापसंद अब याद रहना ही था। और सब याद करते हुए उसके चेहरे पर दर्द व उदासी के भाव उभर आए थे, जो शारिनी जी का प्यार पाकर काफी हद तक कम हो गया था। अब बैठो और खाना खाओ। अर्णव जो धृति के दूसरी तरफ बैठा था, उसने धृति की कलाई पकड़ते हुए उसे बिठा दिया था। उसके छूने पर धृति पल भर को ठिठकी, नाराजगी भरी निगाहें अर्णव की ओर भी उठी, पर फिर सब नजरअंदाज करते हुए चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। बाकी सबने भी नाश्ता शुरू किया, और इसके बाद सबने उसके खाने की खूब तारीफ भी की। कबीर, जिसने आज पहली बार उसके हाथ का स्वाद चखा था, वो भी खुद को खाने की तारीफ करने से रोक न सका, और मन ही मन अर्णव की किस्मत देखकर जरा खींच भी उठा कि गलती से कितनी सही बीवी मिली है उसे। ध्रुति बस सबकी तारीफ पर हौले से मुस्कुरा देती। नाश्ते के बाद सबने उसे नेक में कुछ न कुछ दिया, जिसे ध्रुति ने रस्म के तौर पर झिझकते हुए स्वीकार कर लिया।
बच्चों, शादी कब करेंगे आप दोनों? सगाई को तो आप 2 साल हो गए हैं। सब ड्राइंग रूम में बैठे गपशप मार रहे थे, जब बातों बातों में शालिनी जी ने ये बात उठाई थी, और सवाल कबीर व माधुरी से था। बाकी सब तो सामान्य थे और जवाब के इंतजार में उन दोनों को देखने लगे थे, जबकि इस सवाल ने धृति के दिमाग का जैसे फ्यूज ही उड़ा दिया था। शादी? धृति ने चौंकते हुए कहा और फटी आंखों से अचंभित सी माधुरी को देखने लगी। माधुरी की निगाहें भी उस पर पड़ी और वो समझ रही थी धृति की आंखों में झलकते सवाल को। आखिर उनकी दोस्ती काफी गहरी थी, पर उसने अब तक धृति को अपने और कबीर के रिश्ते का सच नहीं बताया था, उसे भनक तक नहीं लगने दी थी, इसलिए उसका शौक होना लाजमी ही था। हाँ शादी, माधुरी और कबीर इंगेज्ड हैं, अर्णव ने उसकी हैरानी का सबब जानते हुए सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति अर्णव को हैरान परेशान सी देखने लगी थी। क्या हुआ बेटा, आप इतनी चौंक क्यों गईं? क्या आप ये बात नहीं जानती थीं? भावेश जी ने धृति के चेहरे के भाव को गहराई से ऑब्जर्व करते हुए सवाल किया, जिस पर धृति ने झट से इनकार में सर हिला दिया। अब सबकी निगाहें माधुरी और कबीर पर ठहर गईं और आंखों में एक सा सवाल, जिसे समझते हुए कबीर ने एक नज़र माधुरी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, असल में ये माधुरी का फैसला था, वो यहाँ किसी को हमारे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती थी, और अच्छा सा मौका देखकर भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हमने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। कबीर ने सफाई पेश की थी, जिसे सुनकर पल भर को धृति ने माधुरी को देखा, फिर सर झुका लिया। सरप्राइज नहीं, आप दोनों ने हमारी बहू को शॉक दे दिया। दादाजी ने दोनों को आंखें दिखाईं तो दोनों ने माफ़ी मांग ली। बताइए भाई, शादी करने का कब का इरादा है आप दोनों का? अब तो अर्णव ने भी शादी कर ली, शालिनी जी ने सवाल दोहराया, जिस पर माधुरी और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। माधुरी के चेहरे पर सख्त भाव थे तो कबीर की आंखों में इल्तिजा, जिसे माधुरी ने ठुकरा दिया और बाकी सब की ओर नजरें घुमाते हुए मुस्कुरा दी। आंटी, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, वो भी हो जाएगी। अभी तो हम दोनों अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ अधूरे काम भी निपटाने हैं, उसके बाद शादी का भी सोच लेंगे। उन पर सब ने थोड़ा दबाव डाला, फिर बातों की दिशा मुड़ गई और सब फिर से बातों में लग गए। वहाँ हंसी मजाक चलने लगा, ठहाकों की आवाज़ से लिविंग रूम गूंज उठा और धृति खामोश बैठी सबको सुनी निगाहों से देखती रही। टू बी कंटिन्यूड।